सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
इसके अंतर्गत सुनिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
मुकुल जी, पिछले दो दशकों में ब्रिक्स एक आर्थिक संवाद मंच से कहीं आगे बढ़कर वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ब्रिक्स की भूमिका में बदलाव हम देख रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में आपको क्या लगता है, जिस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कैसी संभावनाएं बनती हैं?
देखिए, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तो रूस ने चाइना और भारत से ये कहा था कि हम लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि जो डॉलर है या जो जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होता है उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रोल है, और वो हमारे ऊपर सैंक्शन डालते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन पड़ रहे थे और उनके ऊपर नहीं पड़ रहे थे, उनको संभावना थी। तो वहां से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जब ये जो चीज एक छोटा सा ग्रुप तीन देशों का बना, उसमें फिर ये थिंकिंग हुई कि अन्य विकासशील जो देशों को भी जोड़ा जाए। तो उसमें ब्राजील आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, और उसकी वजह से इसका आकार सिर्फ एशिया यूरोप तक नहीं सीमित रहने के बजाय एक वैश्विक इसका आकार बन गया। तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 11 देश इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जो विकसित होते हुए देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि सबको मिलाकर विश्व का आर्थिक संपत्ति है उसमें आधे से ज्यादा ब्रिक्स में आ गई है। तो एक इनके ऊपर एक भार भी है कि अन्य देशों को एक दिशा दें, खासतौर से जो विकासशील देश हैं, और अब हम दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अब उस बराबरी के मुकाबले को करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि एक विजन या एक थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अभी तक तो ये था कि ये ठीक नहीं है, अब पहली बार भारत ने एक दिशा ये दी है कि हमको किस बात पर जोर देना चाहिए, किन चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। 170-180 विकासशील देश हैं, तो वो इस बैठक का ये महत्व है। और ये एवोल्यूशन कहिए या ये जो बदलाव आया है वो इसलिए भी आया है कि विश्व में भी अब एक बदलाव आ चुका है। जहां पहले एक तरफ आर्थिक या सैनिक या पर्यावरण अलग अलग माने जाते थे, अब ये बात सामने आ रही है कि सब सम्मिलित हैं। अगर पर्यावरण को दृष्टिकोण को हम नहीं जोड़ देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाकर हमारी सैनिक शक्ति पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक शक्ति भी हर देश के पर्यावरण और आर्थिक स्थिति को देखते हुए बनती है। अगर पर्यावरण में समस्या होगी, शहरों में समस्या होगी, या तो हमारा आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा, ये चीज सामने आ गई है
जी।
पहले ये कहा जाता था या जो वेस्टर्न वैज्ञानिक हैं वो ये कहते थे कि हिमालय की नदियों में पानी कम होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ कम गिर रही है। अब ये सामने आंकड़ा आ रहा है कि हिमालय की नदियों में पानी उतना कम नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा था, पर यूरोप की नदियां सूखती जा रही हैं। ये चीज आज विश्व के सामने, यूरोप के सामने आ गई है कि उनकी नदियां सूखती जा रही हैं, पर हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है। तो इसलिए भारत ने अगर एक दिशा देता है कि अब हमको इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, या जंगल ठीक से लगें, या हम वेस्ट कम करें, तो लोग सुनने को तैयार हैं
जी। मुकुल जी, भारत की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में पर्यावरण और सतत विकास के ऊपर विशेष तौर पर महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिस पर हम अभी से नहीं सदियों से जोर देते आए हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री बहुत पहले ये बात कही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमको ये नहीं देखना है कि हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस जिस पर जोर दे रहे थे, हमको ये देखना है कि हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत फर्क है कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जाना है। हमको देखना है कि जैसे जैसे लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों का विकास हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट है या जो चीज हम बर्बाद करके फेंक देते हैं उसमें कमी आनी चाहिए। ये आंकड़े सामने आए हैं कि वेस्ट में आधे से ज्यादा खाना फेंका जाता है
जी।
ये नहीं कि खराब हो जाता है क्योंकि सड़ जाता है, क्योंकि तापमान ऊंचा है, जैसे हमारे यहाँ होता है। कुछ खाना जो मंडियों में नहीं उपयोग में आता है, पर ये चीज वहाँ नहीं है। वहाँ पे जो दुकानों से लोग खरीद के लाते हैं आधे से ज्यादा वो फेंक देते हैं। वो उनकी इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही थी कि देखो हमको ये देखना है कि हम किस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, व्यक्तिगत विकास, और इसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना है पर अपनी लाइफस्टाइल, जो हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर रहे हैं। इसी से फिर आगे चलता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको ये देखना है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, और अगर हमको कहा जा रहा है कि आप अपना विकास इस तरह से करिए ताकि क्लाइमेट चेंज पर असर कम पड़े, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका असर हमारे जनजीवन में हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी कहा था 2018 में, सबसे पहले कहा था संयुक्त राष्ट्र में कि क्लाइमेट जस्टिस होनी चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमको देखना है कि हम बर्बादी ना करें, और हम जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हम अपना विकास रोकें, हम एक दिशा दे रहे हैं कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। और भारत तो इस स्तर पर है कि जैसे चाइना का विकास अब विश्व में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहा है, और वो एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल है या तेल या कोयला जो है उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं उनकी तुलना में, पर भारत के जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं वो वर्ल्ड की एवरेज से भी कम है। तो भारत ये कह रहा है औरों से कि देखो ये संभव है कि एक नई दिशा में हम विकास कर सकते हैं अपना, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि वही किया जाए जो विकसित देशों ने किया, और इसकी वजह से हमारे ऊपर आप दबाव मत डालिए पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर भारत ने इस बैठक में आगे बढ़ाया है लाइफस्टाइल करके कि भाई देखो अगर हमको कुछ करना है तो हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो देखें, और हम इस पर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको हम फेंके नहीं पर हम ये देखें कि उसका फिर इस्तेमाल कर सकते।
आपने लाइफस्टाइल की बात की है तो हमारे यहाँ पर मिशन लाइफ की बात की गई है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ, इस अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विकास करने की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स देशों के बीच में लाइफ जैसी जो व्यवहार आधारित पर्यावरणीय मॉडल की बातें हैं उनको व्यापक स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है और इसके लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता होगी।
देखिए इसमें सहयोग तो यह है कि भारत ये कह रहा है कि कुछ हम ऐसे नियम बनाएं, हम आपस में ऐसा नियम करें या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए ऐसे सिद्धांत बनाएं कि हम वेस्ट ना करें। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि विकसित देश ये कहते थे कि हम लोग बैठ के ऐसे नियम बनाएंगे जो सबको पालन करना पड़ेगा। भारत ये नहीं कह रहा है कि ऐसे नियम बने जिसका सबको पालन करना होगा। भारत ये कह रहा है क्योंकि हमारे सभी देशों में नगरीकरण हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, तो इन शहरों का आकार कैसा हो, हम अपना दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयास करें कि हम वेस्ट ना करें। तो भारत ये नहीं कह रहा है कि इसको एक कानून के रूप में हमको अपनाना चाहिए पर इसको हमको एक स्टैंडर्ड कहिए या हमको एक दैनिक जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रकार भारत ने कहा है इसी के लिए नहीं अन्य चीजों में भी कि कोई नियम नहीं बनना है, कोई रेगुलेशन या फोर्स नहीं होना है, हमको स्वतः ही करना है क्योंकि ये हमारे हित के लिए है, तो ये एक्सेप्ट होगा।
अभी आपने सतत जीवन शैली की बात कही है तो ब्रिक्स की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं में भी सतत जीवन शैली को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आम नागरिकों की जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सके, जैसे कि आपने आर्थिक विकास की बात सबसे पहले कही थी।
देखिए अभी तक तो थिंकिंग ये थी कि जो विकसित देशों ने मॉडल अपनाया है या जिस प्रकार से उनका विकास हुआ है सबको वही तरीका अपनाना चाहिए। चाइना का विकास हमारे से पहले हुआ है
जी,
उनने एक दिशा दिखाई कि भी जरूरी नहीं है कि उसी तरह से शहर बने, उसी तरह से हम लोग एनर्जी उत्पादन करें, कहते हैं सोलर और विंड की तरफ जाइए। तो भारत का एक योगदान इस तरफ नहीं हो रहा है कि हमारा उत्पादन में हम क्या परिवर्तन करें जो चाइना ने किया है। भारत ये कह रहा है कि जो हमने नगरीकरण कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें हमको विकास परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने आगे कुछ विचार रखे हैं इस बैठक में कि अगर हमको क्लाइमेट चेंज का उदाहरण ले लीजिए, उससे बचाव करना है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नदियों में उतना कमी नहीं आ रही है जितना यूरोप में आ रही है, तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है जो उनकी प्राथमिकताएं हैं कि बर्फ कम गिरेगा, बारिश कम होगी, नदियों का पानी कम होगा। हमको ये देखना है, पेड़ लगाओ, हमको ये देखना है कि सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है पर हमको जो रेगिस्तान फैलता जा रहा है जो उपजाऊ जमीन बेकार हो रही है उसको हम कैसे ठीक करें, तो हम पेड़ से अपना दृष्टिकोण हटाकर जमीन की तरफ ले जाएं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम ये ना देखें कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, हम ये देखें कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको देखें। तो एक नई दिशा ये दी जा रही है इस बैठक में कि समस्या तो वही है, उसका निदान क्या होगा उसमें हमको ये देखना है कि वो निदान ऐसा ना हो कि जो उनने हमसे कहा है जो उनके लिए फायदामंद हो सकता है या उनकी परिस्थितियों को देखता है, पर उसका निदान हमको ये देखना है कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जा सकता है। और जितने भी ब्रिक्स देश हैं या अन्य विकासशील देश हैं, सब में कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग देहात में अभी रहते हैं और रहते रहेंगे। तो इसलिए जो नई दिशा दी जा रही है, प्रधानमंत्री ने लाइव से शुरू किया और आगे भी कहा जा रहा है कि जो हमने परिभाषा हमने अपनाई थी उनके कहने पर उसको हमको एक नई दिशा देनी है, वो आगे बढ़ रही है।
मुकुल जी, अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी केंद्र हो जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बातें होती हैं, प्रतिबद्धताएं भी जाहिर की जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये है कि भारत ने जो भी बात कही उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ब्रिक्स के जो पर्यावरणीय एजेंडे को लेकर के अब बैठकें हो रही हैं, इनको आपको क्या लगता है कि कैसे ये परिणाम अपना देंगी और क्या आवश्यक है उनको प्राप्त करने के लिए?
देखिए, भारत का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कहा, अपना मिसाल दिया है कि जो ग्लोबल एमिशन का एवरेज लेवल है उससे भारत कहीं कम है और विकास हो रहा है भारत में। तो उसी धारा को लेकर इस ब्रिक्स समिट में जो सूचना मिल रही है कि जो अधिकारी स्तर पर बैठक हुई है या हो रही है उसमें ये बात आई है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, सिर्फ घोषणा तक न रखें पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, इसको हमको लागू करना है
जी।
तो वहाँ ये बात आ रही है कि मिसाल जो बात आई कि साहब ये जो जंगल में आग लगती है, तो ये बात आ रही है कि उसमें टेक्निकल नॉलेज का एक डेटाबेस बनाया जाए, उसको हम शेयर करें। इसी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी की बात की कि हम वेस्ट ना करें, तो ये आया कि कुछ उसके कुछ नियम बनने चाहिए, कानून नहीं बनने चाहिए बस कुछ नियम बनने चाहिए। और ये बात आई कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हमारे गांव में हर देश की सभ्यता में जो जिस तरह से ये रहते थे लोग, उसको भी हम एक आंकड़े में लाएं। तो एक तरफ से तो ये है कि नई दिशा है, दूसरी तरफ से ये है कि टेक्निकल लेवल पर डेटा की लेवल पर भी चर्चा की जा रही है कि इसमें भी एक समानता आ जाए ताकि हम आपस में इसको शेयर कर सकें और इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबको फायदा हो, हम एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये भी एक नई दिशा आई है कि एक्सपीरियंस शेयर करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमको विकसित देशों से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने पास ही इतने साधन है, इतना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है और हमारे पास डेटा को एकत्रित करके हम शेयर कर सकते हैं। तो ये एक नई बात आई है इस बैठक में।
मुकुल जी, जंगल की आग का जिक्र किया आपने, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो हमें नजर आता है कि भारत में भी जंगल की आग का सामना करना पड़ता है लोगों को और विदेशों में भी बहुत सारी जगह पर जंगल की आग लगती है, कई सारे जंगल बिल्कुल जलकर राख हो जाते हैं। और हालांकि एक जंगल खड़ा करने में बहुत लंबा समय लगता है लेकिन राख होने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। ये जो स्थिति है इससे निपटने के लिए किस तरह की प्रणाली या फिर किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह से संस्थागत सहयोग किया जा सकता है या कैसे बदलाव लाया जा सकता है कि हमें इतनी बड़ी समस्या का सामना भी ना करना पड़े और अगर करना भी पड़े तो उसके लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जल्दी से जल्दी हो।
देखिए, जंगल में आग तो हर जगह लगती है। ये देखा गया है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तापमान की वजह से जंगल में भीषण आग लगी है। भारत में विशेषता यह है कि भारत अकेला देश है विश्व में जिसमें फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है
जी।
किसी भी देश में फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस नहीं माना गया है। तो ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनकी क्षमता, उनकी सोच अन्य देशों से फर्क है। तो इसलिए इस बैठक में जो बात आ रही है कि अर्ली वार्निंग पर जोर दिया जाए
जी,
कि हम क्या प्रयास करें, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ पहले से आइडिया हो जाए कि यहाँ आग आएगी, इस तरह से हवा के प्रकोप से बढ़ेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस पर भारत में अच्छा काम हुआ है सैटेलाइट के जरिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत सोच के इस बात को रखा है क्योंकि भारत में ये क्षमता है, भारत और देशों को इसमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए अपने अनुभव के साथ। तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता मिलेगी और ये फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान पर आएगा।
जी मुकुल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में